अगली आयत देखिए, आयत 105, मा यवदुल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी वलल मुशरिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम। ये सारा कुछ किस जज्बे के तहत करते हैं, यानी क्या जज्बा मुहर्रिका है? तो जज्बा यह है कि वो ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको कोई खैर ना दे। जब अल्लाह के नाम पे सजी हुई महफिल में लोग आते हैं तो उनके दिल बदलते हैं, जब दिल बदलते हैं तो लोग खुश होते हैं, इस खुशी में वो जाके बाहर भी तस्करे करते हैं, हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, हमें खैर हो रही है। अब जब ये बात होती है तो बात कहने वाले या उस प्लेटफॉर्म का तस्करा आता है, तो बाहर बात जब जाती है तो बस वो लोग होते हैं कि जो इसको अपने खिलाफ थ्रेट फील करते हैं। हमारे कल्चर का एक मसला है, और वो क्या है कि जब किसी एक की तारीफ की जाए तो दूसरे लोग उसको दूसरे की बुराई समझने लगते हैं। मसलन अगर किसी घर में बहू की तारीफ हो ना, तो उस लगता है कि सास की बुराई हो रही है, कि हमने इसको कौन सा दुख दिया हुआ है, हमने भी तो इसको बहुत खुश रखा हुआ है। इसी तरह जब किसी एक दीनदार की कोई तारीफ करता है, मिसाल है कि अगर कोई कहीं सीखता है अपने उस्ताद से, उसको फायदा मिलता है, और फितरी बात है कि इंसान को जिससे कुछ मिलता है उसके आगे दिल भी झुकता है, निगाहें भी झुकती हैं, और उसका इजहार जाके बाहर होता है, तो बाज लोग उसको उसकी तारीफ के रंग में देखने की बजाय कहते हैं कि ये दूसरों की बुराई कर रहा है। और नतीजा क्या होता है कि इस किस्म की बातें करके लोग पीछे ले जाते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इनकी ख्वाहिशें क्या हैं कि अल्लाह के नबी को कोई खैर ना मिले। लफ्ज़ खैर को अगर आप देखें ना, नकेरा में आया इधर, बिल्कुल आप कहें कि कॉमन नाउन के अंदर है। कोई खैर, दुनिया की भी खैर, शोहरत, इज्जत, माल भी खैर होता है, और आखिरत तो बिल्कुल ही ना मिले। अल्लाह करे ये सारा काम फ्लॉप ही हो जाए, कोई मर जाए तो सारा प्लेटफॉर्म ही ख़त्म हो जाए। कुछ एंड कुछ अल्लाह ताला कहते हैं क्या इनकी इन ख्वाहिशात को पूरा किया जाएगा? नहीं, वल्लाहु यख्तसु बिरहमति ही मैं यशा, अल्लाह जिस पे चाहते हैं अपनी रहमत खास कर लेता है। वल्लाहु जुल फजल अजीम, और अल्लाह ताला बड़े ही फजल वाला है कि अल्लाह ने अपने नबी को जो इज्जत और मोहब्बत और खैर दी, इनकी वजह से नहीं दी, अल्लाह अपने खजानों से देता है। जो बंदा ऐसे काम करता है उनके मामलात को अल्लाह ताला खुद ही निबट लेता है कि देखो मैंने उनको दिया है, तुम क्यों हसद करते हो? इसीलिए आप देखिए कि अगली आयतों में फिर हसद की बात आएगी कि ऐसे लोग जो हैं ये शोशे छोड़ते हैं। अब अगर आप एक काम कर लें, ये जो आयत 104 और 105 है ना, इसके टॉपिक में ऊपर लिख लें कि इस सबक में हम यहूद के तीन शोशे और उनका रद्द देखेंगे। जैसे याद है आपको पीछे बनी इसराइल की हिस्ट्री में हमने बनी इसराइल के रवैये भी देखे थे ना, हुज्जतबाजी और बहसें हुज्जतें। तो इस सबक में हमें अल्लाह के नबी की नाते से आपके इल्मी सफर को उसके अंदर खलल डालने के लिए, अल्लाह के नबी से दूसरों को रोकने के लिए यहूद ने जो शोशे छोड़े थे, आज हम उसको देखेंगे। जिसमें से पहला शोशा ये है कि उस महफिल में जाके उल्टे सीधी बातें छेड़ना, अल्लाह के नबी के नाते से वहां बातें खराब करना, ये पहला शोशा था उनका। वो कहते थे अच्छा अगर ये नबी है तो इनको पता क्यों नहीं चल जाता कि हम इनका मजाक उड़ा रहे हैं? पहले अल्लाह के नबी के खिलाफ बातें करते, फिर घर जाके हंसते। देखो बनते उस्ताद हैं, पता इनको कोई नहीं, पीछे लोग क्या कर रहे होते हैं। देखो ये तो हमें पढ़ा रहे थे, हम कोई नहीं थे पढ़ रहे, हम तो मैसेजिंग कर रहे थे और हम तो फोन पे बातें कर रहे थे। यानी फिर इस पे वो खुश होते थे बाद में, जिस तरह वो कहते हैं ना कि आज खूब बेवकूफ़ बनाया, और अगर कोई टोक देता तो उसके ऊपर जवाब में राय ना कहते ताकि लोग बात को ना सुन सकें। तो अल्लाह सुबहान तआला यही कहते हैं कि असल बात क्या है कि ये चाहते नहीं कि इस महफिल से कोई खैर लेकर उठे। एक दूसरा शोशा, अब नंबर मिसाल है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हफ्ते में 3 दिन जाते थे ये लोग, तो किसी एक दिन ये रायना वाला शोशा छोड़ देते थे, हर वक्त तो नहीं कर सकते थे ना, फिर तो बात खुल जाती। इसी तरह एक दूसरा शोशा छोड़ते थे, अब उसका तस्कर आ रहा है। पहले वो शोशा समझ लें तो फिर उस आयत पे चलें, या आयत पढ़नी है तो उसको समझ लें, शोशा ही समझ लें पहले तो बेहतर होगा। यहूद देखते क्या था कि अल्लाह के नबी की ज़ुबान से जो इल्म लोगों को मिल रहा है उसमें बहुत सारी वो बातें हैं जो पहले से तौरात के नाते से मौजूद थी, और अब उसमें तब्दीलियां की जा रही थी। बात वाज़े? चलिए थोड़ा और वाज़े कर लीजिए। आप एक समझ लें कि अल्लाह का दीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही दीन रहा, हज़रत नूह का, हज़रत मूसा का, ईसा का और नबी सल्लम का दीन एक ही रहा। हाँ शरीयतों का फ़र्क है, दीन और शरीयत का फ़र्क बहुत तफसील से सूरत मायदा में आप समझेंगे, फिर आपको इंशाल्लाह इसकी ज़्यादा वाजह समझ आएगी। बात मतलब ये था कि वक्त के हिसाब से छोटी छोटी तब्दीलियाँ तो हुई लेकिन अकायद नहीं बदले। किसी नबी के दौर में ये नहीं कहा कि अल्लाह दो हैं या तीन हैं, अल्लाह हमेशा है कि आखिरत वही है, रसूल का तरीका है। शरीयतों में फ़र्क ऐसे था, मसलन जैसे हज़रत आदम के दौर में चूंकि नस्लें बढ़ानी थी तो सगे भाई बहनों में निकाह जायज़ था, सुबह की बेटी शाम वाले से, शाम की सुबह से, मिसाल है। लेकिन जब नस्ल एकदम शुरू हो गई चलनी चलानी तो बात ख़त्म हो गई, दैट्स फाइन। अब इस सूरत में होता क्या था कि दीन को अल्लाह ताला ने यूं तदरीज के साथ बेचा, जिसको इंग्लिश में आप कहेंगे ग्रेजुअलिटी, ग्रेजुअली दीन फैलता गया। जब हज़रत ईसा तक का दीन आ गया, तौरात उस वक़्त आखिरी किताब थी, और आपको पता भी नहीं है, अगर मैं भी बोल दूंगी तो आपके जहन उधर चलेंगे, लेकिन सिर्फ इशारा ज़रूरी है कि हज़रत ईसा के नाम पे जो हम इंजील कहते हैं, तौरात का तो आप बहुत फिक्र सुनेंगे, इंजील क्या थी? कोई किताब थी, कोई उतरी थी? नहीं, इंजील तो कुछ और थी। ये तो हम जाके सूरत आल इमरान की पहली आयत में समझेंगे। देखिए पीछे ये जिक्र इशारतन हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि अभी आपके जहन इतने फास्ट नहीं चलेंगे, इसलिए घबराएं ना कि अब हम तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन इन बातों से ये खुश हुआ करें कि अल्लाह का कलाम पढ़ने से आपको उनका दीन कितना समझ आ रहा है। हर दौर में दीन तरतीब से चलता जा रहा था। इंसानियत शुरू हुई, आप यूं सोचें कि हज़रत नूह और हज़रत मूसा का जो दौर था, हज़रत मूसा के दौर को ले लीजिए, तो वो ऐसे जैसे इंसानियत का चाइल्डहुड था, छोटा बच्चे है इंसानियत, क्योंकि अभी दुनिया शुरू हुई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में इंसानियत समझ ले कि टीन एज पे आ गई। अल्लाह का नबी का सल्लम का दौर क्या है? मेच्योरिटी का दौर है, क्योंकि ये एक आखिरी उम्र आ गई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो दीन दिया, आप देखें उसमें मिरेकल्स कहते थे। आप अमूमी तौर पर देखेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जादू, यदे बैजा, हाथ डालो तो वाइट हो जाए चमकता हुआ, और छड़ी को हाथ में डाला तो वो सांप बन गई, ये बच्चे वाली बात है ना। तो जैसे बच्चों को बहलाने के लिए को पपेट से पकड़ा देते हैं, तो हज़रत मूसा को जो मोजज़ात दिए गए और उस दौर में जो शरीयत के तरफ लोगों को बुलाने के तरीके थे, वो थोड़े बचगाना टाइप लगते हैं, जादू शोशा खेल खिलाने। उसके बाद आप चलिए हज़रत ईसा का दौर है, हज़रत ईसा के दौर में तिब बहुत आम थी, तिब समझते हैं मेडिसिन। अब उस वक्त चूंकि लोगों को बड़ा मान था कि हम मेडिकली बहुत अपडेटेड हैं, तो अल्लाह ने हज़रत ईसा के जरिए अक्ल को तस्खीर करने वाले दे दिए, लेकिन उसमें आप देखेंगे तिब का रंग बहुत दिखेगा, मुर्दों को जिंदा करना, कोढ़ी को ठीक कर देना, नबीना को ठीक करना होता गया। उसके बाद देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आ गया, जो बिल्कुल एक मिच्योरिटी का दीन है, और अल्लाह के नबी ने खुद कहा कि मेरे और क्यामत के बीच में अब कोई फर्क नहीं, मेरा आना क्यामत की एक निशानी है, और वो वक्त जो गुजर गया क्यामत के आने तक, और जो पीछे है, आपने फरमाया जैसे एक कपड़ा उसको फाड़ो पूरा कपड़ा फट जाए और कन्नी का तार बच जाए। तो इस बातों से पता चलता है कि हम मुसलमान इंसानियत के अब आखिरी दौर में आए हुए हैं। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन दिया गया, तो ये बहुत मेच्योर दीन दिया गया, लॉजिकल विजडम वाला, हिकमत वाली बातें थी। अल्लाह के नबी के जरिए जो कुरान आप इस वक्त देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप इसकी एक एक आयत को सुन के मशहूर नहीं हो जाते कि अल्लाह ने कैसी प्यारी आयतें उतारी। अब ये ग्रेजुअलिटी जो थी, अब हुआ क्या था कि दीन एक था, शरीयतें बदलती गईं, कुछ चीज़ें स्लोली स्लोली लोगों के अंदर रखी गईं ताकि वो यूज़ टू हो जाएं, ठीक है। मसलन आप देखिए कि एक माशरा जहाँ शराब पानी की तरह पी जाती थी, अब उससे आप कहते हैं कि शराब छोड़ो, ओवरनाइट चेंज है, कल पी थी आज छोड़ो क्योंकि मुसलमान हो गए हो, नहीं छोड़ सकेगा ना एकदम। उसके लिए 3 मरहलों में शराब हराम हुई, आप सारी आयतें कुरान में पढ़ेंगे, सूरत बकरा से लेके सूरत मायदा तक ये सिलसिला चलता जाएगा। पहले कह दिया ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसका नफ़ा नुकसान का फ़र्क करवा दिया, फिर उसके बाद अगले हुक्म में कह दिया कि अच्छा नमाज से पहले शराब न पिया करो। जब माइंड मेकिंग हो गई आखिरी चौथे दर्जे पे, फिर कहा कि यसलूना का निल खमरी वल मैसिर, कहा कि ये हराम है और इसके पास भी नहीं जाओ। यानी ये आपको मैं खुलासा बता रही हूँ, कोई तरतीब नहीं बता रही। नतीजा क्या हुआ कि फिर शराब ख़त्म हो गई। तो जिस तरह दीन की बातें शुरू में मुश्किल लगती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है, आपको मुश्किल नहीं लगती। एक बंदे ने कभी रोज़ा ही नहीं रखा, अब उसके लिए रोज़ा रखना बड़ी मुश्किल चीज़ है, आहिस्ता आहिस्ता रखेगा तो छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। नमाज नहीं कोई पढ़ता, बहुत मुश्किल है, और जब पढ़ता जाएगा तो आसान होता जाएगा। तो इसमें हुआ क्या कि जब अल्लाह के नबी का दौर आ गया, तो कुरआने पाक में कुछ आयतें पहले नाजिल हुई वक्ती तौर पे लोगों को यूज़ टू करने के लिए, और बाद में जब यूज़ टू हो गए उसको छोड़ के अगले हुक्म पे आ गए, तो पिछली आयत हो गई ख़त्म, मनसूख। मनसूख को कहते हैं, जैसे कि इस वक्त आप सब फीडर मनसूख कर चुके हैं, आप में से कोई फीडर में दूध पीता है? बचपन में तो पीते थे, क्यों? तब जरूरत थी। आप दूध फीडर की बजाय आप खुद पी सकते हैं तो छोड़ दिया ना। तो जैसे बचपन में छोटी छोटी बातें सीखते थे, आप सारी बड़ी सीखने लगे। तो इस्लाम में भी यही होता है। अल्लाह ताला ने दीन को इस खूबसूरत तरीके से हमारे सामने रखा कि जिसके बाद इस दीन को अडॉप्ट करना बहुत आसान हुआ। यही बात इस आयतों में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मा ननसख मिन आयतिन। अब इस आयत के साथ रहे, इस वक्त किस पे नजरें होंगी? पारे के ऊपर होंगी, वरना कभी नहीं समझ सकेंगे। ठीक है, तो मा ननसख नहीं हम मनसूख करते के मानों में कह लें, मा नाफिया होगा नहीं वाला, या जो भी हम मनसूख करते हैं, अंदाजे फर्क है, बात एक ही है। मा ननसख मिन आयतिन, जो भी आयत हम मनसूख करते हैं, औ नुनसिहा, या हम आपको भुलवा देते हैं, कोई बात नहीं, ना तिबी खैर मिनहा, हम इससे ज्यादा अच्छी चीज लेकर आते हैं, कोई बात नहीं, एक चीज ली उससे अच्छी चीज आपको दे दी, पुराना जोड़ा लिया तो नया दे दिया, तो खुश होना चाहिए ना, आसान हुक्म आ गया ना। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला तो हर चीज पे कादिर है? आयत 107। अलम तालम अन्नल्लाह लहु मुल्कुस समावाती वल अर्द, क्या नहीं तुमने देखा कि बेशक अल्लाह के लिए है बादशाही आसमानों और जमीन की, वमा लकुम, और नहीं है तुम्हारे लिए, कौन, मिन दूनिल्लाह मिन वली वला नसीर, अल्लाह को छोड़कर कोई वली या कोई दोस्त। ये दो आयात इस बात का इजहार है, यहूद ने एक दूसरा शोशा ये छोड़ा मुसलमानों के खिलाफ करने के लिए, या अल्लाह के नबी की महफिलों से लोगों को बदजन और बदगुमान करने के लिए। अरे उधर क्या चाहते हो पढ़ने, आज एक बात कह दी, कल दूसरी बात कह दी, ये तो दिन ब दिन रूल्स ही बनाते जा रहे हैं, ये तो मुश्किलें बड़ी आ रही हैं। और देखो शुरू में कहते थे कि एक एक लफ्ज़ की वजाहत करेंगे, बाद में कहेंगे नहीं अब आप खुद ढूंढ लें। हालांकि सोचा जाए कि शुरू में कुछ चीज़ें यूज़ टू करने के लिए हुई, बाद में आहिस्ता के लिए, बजाय इसके कि इस पे खुश हों कि अच्छा बिल्कुल इंसानी जहन की रियायत करते हुए आपको पढ़ाया जा रहा है, वो कहते थे नहीं नहीं ये अपनी बात बदल लेते हैं, ये नहीं कहते, वो नहीं करते, दिस एंड दैट। पहले इन्होंने कहा था जिस दिन हाफ होगा उसी दिन टेस्ट ले लेंगे, फिर इन्होंने कहा चलो ऐसा करो कि वीकेंड के बाद ले लो ताकि इनको छुट्टियां मिल जाएं तो पढ़ लें। तो देखो देखो इन्होंने अपना रूल तोड़ दिया। अब आप बताएं कि जिस दिन पारा आधा हो उस दिन टेस्ट लेना, ये रूल है मान लिया, लेकिन कहा गया कि इस रूल को थोड़ा सा मनसूख करके इनको 2 दिन एक्स्ट्रा दे दो कि वीकेंड के बाद आए। इसमें स्टूडेंट्स को फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ ना। तो स्टूडेंट्स जिस चीज से खुश होते हैं, तो बाहर का कोई बंदा जो सिर्फ शोशा छोड़ना चाहे वो कहेगा इनकी तो बात ही बदलती रहती है, तो आपका दिल गवाही देगा ना कि नहीं बेवकूफ बंदे जो बात वो करे हमारे फायदे की है। यही बात इधर समझाई जा रही है कि देखो कुरान की कोई आयत अगर मनसूख होती है, मिसालें बहुत सारी हैं, शाह वलीउल्लाह जिन्होंने बहुत ज्यादा उलूमुल कुरान पे काम किया, वो कहते हैं कि पूरे कुरान में सिर्फ 5 आयतें मनसूख हैं। जरूरत नहीं इस वक्त डिटेल्स की, आप रब का पैगाम मेरे नाम सुनना चाहें तो उसमें इन आयतों में मैंने वो सारी डिटेल्स लिखाई थी। दिन ब दिन स्क्वीज होता गया, तस्करा ही काफी है, कुछ कहते हैं 200 आयतें, कोई 50 कहते हैं, डिफरेंट बातें हैं, लेकिन इस वक्त भी कुरान पाक में 2-3 आयतें ऐसी हैं, जब भी हम पहुंचेंगे तो जिक्र करूंगी कि देखिए ये मनसूख है ये नासे है। ये पहली आयत थी, अब इस पे हुक्म छोड़ दिया, इस वक्त जिक्र कर देती हूँ सिर्फ औरत की इद्दत का। दौरे जाहिलियत में इद्दत 1 साल की होती थी, जब किसी औरत का शौहर फौत हो जाता था तो 1 साल तक ना वो आगे निकाह कर सकती, और जो उसके हालात थे वो हम जहाँ पहुँचेंगे देखेंगे। इस्लाम ने इसको 4 माह 10 दिन पे रखा, ठीक है, 1 साल से 4 माह 10 दिन बेहतर है कि गलत है? ये है नाती भी खैर मिन्हा, कि हुक्म दिन ब दिन आसान किए जा रहे हैं, तुम इस पे परेशान किए होते हो, लिहाजा तुम इस चीज को लो। यहूद क्या सोच लेते थे कि हमारे ये शोशे अल्लाह के नबी तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन एक बात अपनी पल्लू से बांध लें, जो बात आप मुंह से निकालेंगे वो बात आपको जरूर सुननी पड़ेगी, दूसरे तक बात पहुंच ही जाती है। तो वो इस तरह की बेतुकी बातें पेश करके लोगों को अल्लाह के नबी की महफिल से बदगुमान करते थे, दूर करते थे। शोशा क्या था, कहते थे कि देखो कुरान भी तो उसी रब का है ना जिसने तो रात भेजी, तो फर्क क्यों आ रहा है, हम जो बात कहते हैं उससे बदल क्यों रहे हैं। इस पे बात पहले दूसरे पारे की पहली आयतों पे भी आएगी, किबले की तब्दीली पे, क्योंकि वो नासिख और मनसूख का अदर हुक्म था। एक और भी लोगों को बात कहते थे यहूद नबी सल्लम और आपकी महफिल के खिलाफ करने के लिए, कहते थे जी इन्होंने तो ठान ली है, जो बात हम करते हैं ना इन्होंने उसे उलट ही कहनी है। हाँ जी भला हम तो कोई ठीक ही नहीं बात कर रहे, ये स्टाइल होता था। कैसे, असल जो बात पीछे कई दफा तस्करा हुआ और बात पीछे थोड़ा 2-3 रुकू पहले भी हुई थी कि यहूद के उलमा ने तौरात को बदल दिया था, अपनी मर्जी से उसमें कुछ डाला कुछ निकाला। अल्लाह के नबी के जरिए से अब वो चीजें जो उनकी निकाली हुई थी वो लोगों के सामने खुल रही थी। तो यहूद को इसके ऊपर बड़ा गुस्सा आता था कि हम कहते हैं कि सूद हलाल है तो ये अब क्यों फिर कहने लग गए कि हराम है। हम कहते हैं कि बस जिना जो करे उसका मुंह काला करके बस गधे पे चक्कर लगा दो शहर का, ये क्यों कह रहे हैं कि इसकी सजा 100 कोड़े या फिर रजम है। इस तरह का शोशा था, यानी आप कह लीजिए कि एक दीनदार का दूसरे दीनदार के बारे में लोगों को बदगुमान करना, चपकलश और दिल में इस तरह की उल्टी सीधी बातें रखना, ये दूसरा शोशा था। अब चलते हैं तीसरे पे, सबक पूरा होगा तो इसका बुनियादी थीम आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। दो बातें करने के बाद अब तीसरा शोशा आयत नंबर 108 में है, और वो क्या था, अम तुरीदून अन तसलु रसूलकुम, क्या तुम ये इरादा करते हो कि तुम अपने रसूल से उसी तरह सवाल पूछो जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल पूछे गए मिन कबल, इससे पहले। चलो कोई बात नहीं, करो फिर, नुकसान भुगतो क्या। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी, जो ईमान को कुफर के बदले में खरीद ले, यानी ईमान छोड़ दे और कुफर ले ले, ये भी मानी है इसका। और दूसरा मानी बाकी दूसरे तर्जमे पे ले जाएं तो क्या बनेगा कि ईमान तो था अब उसमें कुछ ना कुछ कुफर भी मिलाने लग जाए तो समझ लो कि फकद दल सवा सबील, वो सीधे रास्ते से भटक गया। ये क्या था तीसरा शोशा, कि यहूद सीधे सादे सादा लोग मुसलमान जो अल्लाह के नबी की महफिलों में जाते थे ना, उनको पीछे से पेम्पर करते थे, जाओगे ना जरा ये सवाल पूछना ये पूछना। और वो सवाल क्यों पूछा जाता था, ताकि फितना फैलाया जाए। मसलन ये बताएं जी जरा कज़ाए उम्री क्या होती है, अच्छा जी ये सवाल बताएं जरा औरत और मर्द की नमाज कैसी है, अच्छा जरा आज ये बता दें कि रफुल जदैन करना चाहिए कि नहीं, और ये बताएं कि औरत और मर्द की नमाज में क्या फर्क है। ये वो सवाल हैं जो आप इन सवालों की नौयत से समझ गए होंगे कि आज मुसलमानों पे लेके देखें तो ये फिकही सवाल आते हैं। आज उम्मत मुस्लिमा जो कितने फिरकों में बटी है, कल का सबक आप मिस ना करिएगा, कल के पूरे सबक में आज उम्मत कहाँ भटकी हुई भेड़ों की तरह फिर उसकी वजह दिखने वाली है, इसलिए आपको पहले से अलर्ट दे दिया। आज उम्मत जिन छोटी छोटी चीजों पर बहसें करती है ना, कुछ लोग जब देखते हैं ना कहीं कुरान चल रहा है पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर तो बड़ा कूल काम है, लेकिन मैंने देखा है कि जहाँ पहले से बहुत सारे लोग और भी इस तरह के काम कर रहे होते हैं ना, तो वो लोगों को एक गुमान दे देते हैं कि ये जो कुरान इस तरह पढ़ाते हैं ना लफ्जी तर्जमे के साथ, और औरतें और कुर्सी ऊपर डाल लेते हैं आपको नीचे बिठा लेते हैं, तो फिर वहाँ लोगों को वो फिकी सवालात पे प्रमोट करते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने खुद कई दफ़ा किया, किसी नए कोर्स का इंट्रो डे था, इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं, जिस दिन आप देखिए कि फिकी बातें अभी तक आपने कोई नहीं सुनी, हमसे माशाल्लाह 104 आयतें पढ़ चुके हैं आप लोग, कोई फिकी बातें हुई नमाज ऊंची नीची ये रफुल दें कभी हुई, जहां आयत कोई आएगी जो जिक्र है कर दें, आपका जो दिल करे करे, हमारा अंदाज फिक को तो छेड़ना ही नहीं है इस कुरान के तफसीर में। हाँ फिक के लिए हम आपको तफहीमुस सुन्ना पढ़ाएंगे और वो हदीस में पढ़ाएंगे। बाज लोग तफसीर की क्लास को फिक की क्लास बना देते हैं और फतवों पे फतवे होते हैं उनकी क्लास है, और औरतें वहां से निकलती है ना तो फिर डिस्कशन से ये हो रहे होते हैं कि अच्छा फिर ये है और वो है। एक बात याद रखें, ये जो तफसीर का पीरियड है ना, इसमें कभी फिकी सवाल दिल में लाइएगा भी ना, वरना अल्लाह का कलाम दिल से निकल जाएगा और सवालात जवाबात का दिन बन जाएगा। लेकिन वो इंट्रो डे था, आम बातें जो आपके साथ भी हुई होंगी आपको भी पता है, मोटिवेशन इल्म की अहमियत यही कुछ था। तो उसके बाद बताने के दौरान मैंने एक पूछा कि जैसे आपसे पूछती हूँ कि कोई सवाल है तो पूछ लें, तो उसमें फटाफट एक औरत थी तो उन्होंने हाथ खड़ा किया तो सवाल पूछा, अच्छा ये बता दें कि कज़ाए उम्री क्या होती है। बस वो लफ्ज़ कज़ाए उम्री बोलने का था तो मुझे ये समझ आ गया कि ये सवाल इनका नहीं ये किसी और का है। खैर उस वक्त तो मैंने उनसे जो भी बात करनी थी कह के कि सिस्टर इस वक्त जो बात है वो करें, फिर बाद में जब थोड़ा अल्लाह ने उनका दिल जमाया या क्या हालात हुए तो मैंने उनसे बाद में पूछा कि सच बताएं कि ये सवाल आपने क्यों पूछा, कहती मुझे किसी और ने कहा था आज पूछ के आना, जिनके पास जा रही हो जरा उनसे पूछ के आओ। इसी तरह मुझे याद है कि नॉर्वे में हमने जो सबीलुल हुदा क्लास शुरू की थी, एडमिन्स भी अगर ढूंढना चाहे तो उस क्लास में उनको मिलेगा, उसका इंट्रोडक्टरी सेशन था हमारा, यानी पहला कोर्स हो गया था, बच्चियों की क्लास शुरू की थी हमने 4-5 महीने के बाद, उसमें ये हुआ। तो जब क्लास का मैंने इंट्रो देना था तो हमारी एक वहाँ साथी आई तो मेरे पास आके कहती हैं, खुदा के लिए आज फिरका वारियत मसलक की बात जरूर करें और लोगों को बता दें आपका मसलक क्या है। क्यों कि जितने लोग आए, और पूरा खचा खच हमारा हाल भर गया था उस दिन, कहती कि जितने आए ना इससे बहुत ज्यादा बाहर खड़े हैं, आने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके खिलाफ लोग ये प्रोपेगंडे लोगों में डाल रहे हैं कि ये वहाबी हैं और मसलक है फिरके वारी है। किस्सा मुख्तसर जो भी बात हुई, मेरे दिल में बड़ी गिरा पड़ी। मैंने कहा ये आज मौजू तो नहीं है, हम तो इस पे करते हैं, लेकिन यकीन करें अगर आप उसकी कहीं रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो वाहद वो सबीलुल खुदा वो कोर्स था जिसमें इंट्रो डे पे मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस टॉपिक को बीच में रखा कि हमारा मसलक है ये फिरके। और उसके बाद मेरे पास ब्रेक जब दी, चार पांच सिस्टर्स आई, कहने लगी आपने आज बड़ा एहसान कर दिया ये बात करके, हम भी जब आए थे तो हमारे दिल में यही शक थे, लेकिन आपने जो अपना फिरका बताया मसलक, अब हमें यकीन हम सही जगह पहुंच गए। तो ये उल्टे सीधे सवाल आते, अल्लाह कहते हम तुरीदूना अंतसलु रसूला को, रसूल से अब तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही सवाल करोगे जो के मूसा से पूछे गए, गाय का रंग कैसा हो, गाय बछिया हो, गोरी हो, चिट्टी हो, सवाल पूछे। पीछे आपने बनी इसराइल की हिस्ट्री में पढ़ लिया कि बछड़े के पूजा के मौके पे सवालात हुए, कोहे तूर के ऊपर तो रात उतरी तो सवाल हुए, ये कहाँ से आ गई, किसने आपको बताई। तो अल्लाह कहते हैं ये तो इस कौम का हाल है कि ये पीठ पीछे से वार करते हैं, खुद नहीं आते थे, अपने हमनुमाओं को भेजा करते थे। तो इसमें कहा कि अब अगर तुमने अल्लाह के नबी की महफिल में आके कोई अनरेलेवेंट क्वेश्चन पूछा तो फिक्र कर लो अपने ईमान की, कि ईमान के बदले में कुफर लेके ना जाओ। बहुत सबक है इस हिस्से में, यकीन कीजिए कि अगर हम सब कुरान को इसकी थीम के साथ लेके चलें तो हमारे लिए तो कुरान ही काफी नसीहत है, कि जो हदीसों की रोशनी में हमारे लिए हर उस बंदे से हमें आजाद कर रहा है जिसको हम उस्ताद कहते हैं, जिसको हम दीनदार कहते हैं। कितनी वाज़े आयत है जो इसमें से अमल की बातें हमें मिलती हैं, इसको आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए। पहली बात यह है कि दीन आसान भी है और सादा भी है। बहुत ज्यादा सवाल बोझल बना देते हैं और इख्तलाफात को जन्म देते हैं। मसलन आप देखिए कि गाय के कत्ल की मिसाल ले लेते हैं, यहां एक सिंबल के तौर पे गाय के कत्ल का हुक्म हुआ, कितना आसान था, राइट? लेते एक गाय जिबा करके खत्म। लेकिन उन्होंने सवाल पूछ के क्या किया, अपने लिए मुश्किल किया ना दीन को। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कहा करते थे कि किसी के सवाल के बदले में अगर कोई हलाल चीज हराम हो गई, याद रखिए ये क्यों कहा था, उस वक्त कुरान उतर रहा था। अब कोई सवाल आके पूछता है, अब उसके कहने के जवाब में आयत आ जाती है, ठीक है कल तक ये हलाल थी अब हराम हो गया। लेट्स सी, अगर मिसाल ले लेते हैं आम, कोई आके सहाबी नबी से पूछता अल्लाह के नबी आम हलाल है, तो अगर अल्लाह के नबी इसकी जबान से गुस्से में निकल जाता ना कि हाँ आम हराम है, तो फिर क्यामत तक लिए आम हराम थे रियली? तो आपने फरमाया कि जिसके सवाल से हलाल चीज हराम हो जाए वो अल्लाह के गजब में आएगा। दीन का मिजाज समझ लीजिए, दीन बहुत वाज़े आसान और काबिले अमल है। अल हलाल उबैयन वल हराम उबैयन, हलाल बिल्कुल क्लियर है, मैनिफेस्ट ट्रुथ है, और जो चीजें हराम है वो भी वाज़े हैं। पांच चीजें पूरी शरीयत इस्लाम में हराम है, आप अभी ये दूसरे पारे में भी और सूरत मायदा में भी पढ़ लेंगे, दैट्स इट, खत्म। कुछ चीजों में खामोशी है, कहा उसमें तुम्हारे लिए रहमत है। करना क्या चाहिए, हलाल कभी ना छोड़ो और हराम कभी ना पकड़ो। फिर चोर दरवाजों से ये ना कहो कि यहाँ का ज़बीहा हलाल है, मैकडोनल्ड खा लें, खुशबू बड़ी पसंद है, रह ही नहीं सकते कैंटकी चिकन के बगैर। फिर ये कुछ ना करो, बस जब अल्लाह ने हलाल मुर्गी रखी है तो खा लो उसको, बाकी रह गई शुबे की चीजें जिसमें डाउट्स हैं छोड़ दो। हदीस में आता है कि एक वक्त आएगा कि इतने फितने होंगे कि वो बंदा ही अपने दीन को बचाएगा जो हराम के शुबे में मकरूह को भी छोड़ दे, यानी डाउटफुल थिंग्स को छोड़ दो। दा मा यूरिबिक इला मा ला यूरिबिक, हर उस चीज को छोड़ दो जो शक पैदा करती है और उसको ले लो जो शक नहीं करती। या तो ये कि दुनिया में खाना खत्म हो गया, हलाल खत्म हो गया, फिर तो बंदा हराम खाए। तो बिल्कुल इसी चीज को यहाँ कुफर और ईमान की बात कर दी कि देखो तुमने मुनाफिक होते हुए अहले ईमान की सफों में शामिल थे, लेकिन ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करके ईमान के बदले में कुफर को ले रहे हो। आगे हम पढ़ेंगे सूरत निसा में मुनाफिकीन का तज़किरा, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका, ये बीच में इधर उधर लटकते फिर रहे हैं दो भेड़ों की तरह, ना इधर के ना उधर के। तो यहां से पता चला कि उल्टे सीधे सवालात नहीं करने चाहिए।